ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में 6 दिन के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वार्षिक वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल से देश के ऑटो उद्योग की वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। देश इस समय मोबिलिटी क्षेत्र में भविष्य को दिशा देने के लिए प्रत्येक निवेशक के लिए उत्कृष्ट गंतव्य स्थल बन गया है। भारत में पिछले कुछ वर्ष में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तीव्र वृद्धि पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 640 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण के जरिए घरों के अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह संपत्ति मुद्रीकरण में भी सुविधा प्रदान करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक के 2 पदक विजेता मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रूसी सेना में कार्यरत कुल 12 भारतीय नागरिकों की जान संघर्ष में अब तक जा चुकी है और 16 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि केरल के बिनिल बाबू की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना में अपनी सेवाएं देने वाले अब तक 96 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना द्वारा मुक्त कर दिया गया है, वे भारत लौट चुके हैं। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है। श्री जायसवाल ने बताया कि विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमरीका द्वारा रूसी तेल आयातों पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत भारतीय कंपनियों पर इसके प्रभाव को लेकर मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए अमरीकी अधिकारियों के संपर्क में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा और सुरक्षा माहौल में बढ़ते तनाव को देखते हुए देश के आक्रामक और रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बलों के काम के समय में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। वे आज नई दिल्ली में नौसेना के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देशभक्ति और अनुशासन की भावना सैनिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करने में मदद करती हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि कल कैबिनेट की बैठक में पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में स्थित RINL देश के इस्पात क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनी है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की नामांकन प्रक्रिया आज 1,000 से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन भरने के साथ समाप्त हो गई। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा की शिखा राय और नीरज बासोया ने नामांकन भरे हैं। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, राखी बिरलान और वंदना कुमारी ने भी नामांकन भरे। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 7 बजे बांग्लादेश से होगा। इसी स्टेडियम में रात 8:15 बजे से भारतीय पुरुष टीम श्रीलंका के साथ खेलेगी। उधर राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में आज रात 8:15 पर दिल्ली SG पाइपर्स का सामना सूरमा हॉकी क्लब से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।